अध्याय 38 एदोम के चारों ओर की यात्रा। यह अध्याय गिनती 20 आयत 144 से 29, 21 आयत 1 से 9 पर आधारित है। कादेश में इज़राइल का पड़ाव एदोम की सीमाओं से कुछ ही दूरी पर था और मूसा और लोग दोनों ही प्रतिज्ञा के देश को एदोम से होकर जाने वाले मार्ग से जाने के इच्छुक थे। तदनुसार जैसे परमेश्वर ने उन्हें निर्देश दिया था, उन्होंने एदोम के राजा के पास संदेश भेजा। तेरा भाई इज़राइल यों कहता है, हम पर जो जो क्लेश पड़े हैं वो तू जानता होगा, अर्थात ये कि हमारे पुरखा मिस्र में गए थे और हम मिस्र में बहुत दिन रहे और मिस्रियों ने हमारे पुरखाओं के साथ और हमारे साथ भी बुरा बर्ताव किया, परंतु जब हमने यहोवा की दुहाई दी तब उसने हमारी सुनी और एक दूत को भेजकर हमें मिस्र से निकाल ले आया है। इसलिए अब हम कादेश नगर में हैं, जो तेरी सीमा पर ही है। अतः हमें अपने देश से होकर जाने थे। हम किसी खेता या दाख की बारी से होकर न चलेंगे और कुओं का पानी नहीं पिएंगे। सड़क सड़क होकर चले जाएंगे और जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाएं, तब तक न दाहिने न बाएं मुड़ेंगे। इस नम्र निवेदन को एक चुनौतीपूर्ण अस्वीकृति के रूप में प्रत्युत्तर मिला। तू मेरे देश में होकर मत जा, नहीं तो मैं तलवार लिए हुए तेरा सामना करूंगा। इस प्रतिरोध से अचंभित इज़राइल के अगुओं ने राजा को दूसरा निवेदन इस आश्वासन के साथ भेजा, हम राजमार्ग से ही जाएंगे और यदि हम और हमारे पशु तेरा पानी पिएं तो हम उसका दान देंगे। हमको और कुछ नहीं, केवल पांव पांव चलकर जाने दे।
परंतु राजा ने कहा, तुम निकलकर नहीं जाओगे। कठिन रास्तों पर एदोमियों के सशस्त्र जत्थे पहले से ही पदस्थापित थे, जिससे कि उस दिशा में शांतिपूर्वक कूच करना असंभव था और इब्रियों को बल का प्रयोग करना निषिद्ध था। उनको एदोम प्रदेश के बाहर बाहर घूमकर लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। परीक्षा के समय यदि लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया होता तो यहोवा की सेना का कप्तान उन्हें एदोम में से निकाल कर ले गया होता और एदोम के निवासियों में उनका डर बैठ जाता, जिससे कि शत्रुता प्रकट करने के बजाय वे कृपा दृष्टि दिखाते। लेकिन इज़राइलियों ने तत्परता से परमेश्वर का कहा नहीं माना और जब वे कुड़कुड़ा रहे थे और शिकायत करने में लगे हुए थे, वह सुअवसर उनके हाथों से निकल गया। आखिरकार जब वे इस राजा के पास अपना निवेदन करने को तैयार हुए, उसे अस्वीकार कर दिया गया। जब से उन्होंने मिस्र छोड़ा था, शैतान उनके मार्ग में प्रलोभन और बाधाएं उत्पन्न करने में प्रयत्नशील था, ताकि वे कनान के उत्तराधिकारी न बन सके, और अपने अविश्वास के कारण वे शैतान के लिए परमेश्वर के उद्देश्य का प्रतिरोध करने के लिए लगातार द्वार खोलते आए थे।
परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना और उस पर तत्परता से काम करना आवश्यक होता है, जब उसके स्वर्गदूत हमारे लिए कार्य करने की प्रतीक्षा में होते हैं। शैतान के दूत प्रत्येक बढ़ाए हुए कदम का विरोध करने को तैयार रहते हैं, और जब परमेश्वर पूर्व विचार में अपने बच्चों को आगे बढ़ने को कहता है, जब वो उनके लिए महान कार्य करने को तैयार रहता है, शैतान उन्हें विलंब और हिचकिचाहट द्वारा परमेश्वर को अप्रसन्न करने के लिए उकसाता है। वो उनमें विद्रोह की भावना उत्पन्न करने की या कड़कड़ाहट और अविश्वास जागृत कर उन्हें उन आशीषों से वंचित रखना चाहता है जो परमेश्वर उन्हें देना चाहता है। परमेश्वर के दासों को प्रत्येक क्षण परमेश्वर द्वारा रास्ता खोले जाने पर कूच करने के लिए सर्वदा तैयार रहना चाहिए। उनकी ओर से विलंब शैतान को उनको पराजित करने हेतु कार्य करने का समय देता है।
एदोमियों के इज़राइलियों द्वारा भयभीत होने की घोषणा के तत्पश्चात एदोम से होकर जाने वाले मार्ग से संबंध डिस्प्यूट्स परमेश्वर द्वारा मूसा को दिए गए पूर्व निर्देश के अनुसार उसके लोगों को इस अनुकूल परिस्थिति का उनके विरुद्ध प्रयोग करने को मना किया गया था, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ इज़राइल के लिए कार्यरत था और इसलिए कि एदोमियों का डर उन्हें आसान शिकार बना देता, इब्रियों को उन पर आक्रमण नहीं करना था। व्यवस्था विवरण 2:4 में लिखा है, तुम बहुत चौकस रहो, उन्हें न छेड़ना, क्योंकि उनके देश में से मैं तुम्हें पांव रखने की जगह तक न दूंगा, इस कारण कि मैंने सेईर पर्वत एसावियों के अधिकार में कर दिया है। एदोम अब्राहम और इसहाक के वंशज थे
और अपने इन्हीं दासों की खातिर परमेश्वर की एसाव के बच्चों पर कृपा दृष्टि थी। उसने उन्हें सेईर पर्वत का स्वामित्व दिया था और उन्हें तब तक नहीं छोड़ा जाना था जब तक उनके पाप उसकी कृपा की सीमा को लांघ न जाएं। इब्रियों को कनान के निवासियों को निर्वासित और सरासर नष्ट कर देना था क्योंकि उनके पापों का घड़ा भर चुका था, लेकिन एदोमी अभी परिवीक्षाधीन ही थे और इस कारण उनके साथ करुणामय व्यवहार होना था। परमेश्वर दया करने में आनंदित होता है और वह दंडाज्ञा देने से पहले अपनी संवेदना को प्रकट करता है। वह इसराइलियों को एदोम के लोगों को छोड़ देने की शिक्षा देता है इससे पहले कि वे कनान के निवासियों का सर्वनाश करते।
एदोम और इसराइल के पूर्वज भाई थे और इस रीति से उनके बीच भाइयों जैसी दयालुता और कृतज्ञता होना आवश्यक था। इसराइलियों को उस समय या भविष्य में किसी भी समय एदोम के रास्ते निकलकर जाने की अस्वीकृति द्वारा अपमान का प्रतिशोध लेने को मना किया गया था। उन्हें एदोम प्रदेश के किसी भी भाग पर अपना अधिकार होने की अपेक्षा नहीं करनी थी। इसराइली परमेश्वर की कृपा दृष्टि के पात्र और उसके चुने हुए लोग थे, इसलिए उसके द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का उन्हें अवश्य पालन करना था। परमेश्वर ने उन्हें एक अच्छी विरासत का आश्वासन दिया था, लेकिन उन्हें ये भावना नहीं रखनी थी कि पृथ्वी पर केवल उन्हीं के पास अधिकार थे और अन्य किसी के पास नहीं। एदोमियों के साथ उनके समस्त पारस्परिक व्यवहार में उनके प्रति अन्याय करने से सावधान रहने का उन्हें निर्देश था। मूल्य चुकाकर वे उनसे आवश्यक वस्तुओं को खरीदकर उनके साथ व्यापार कर सकते थे। परमेश्वर के वचन का पालन करने और उस पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में उन्हें स्मरण कराया गया, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। व्यवस्था विवरण 2:7। वे एदोमियों पर निर्भर नहीं थे क्योंकि उनके साथ वो परमेश्वर था जो साधनों में संपन्न था। स्वयं से कुछ भी संबंधित उन्हें बल या छल से प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करना था, किंतु अपने पारस्परिक व्यवहार में ईश्वरीय व्यवस्था के सिद्धांत का उदाहरण होना था। अपने पड़ोसी से वैसा ही प्रेम कर जैसा तू स्वयं से करता है।
यदि उन्होंने इस रीति से एदोम को पार किया होता जैसा परमेश्वर का प्रयोजन था, उनका जाना उन्हीं के लिए नहीं वरन उस प्रदेश के वासियों के लिए भी आशीष सिद्ध होता, क्योंकि उन्हें परमेश्वर की आराधना और उसके लोगों से परिचित होने का अवसर प्राप्त होता और वे देख पाते कि किस प्रकार याकूब का परमेश्वर उससे प्रेम रखने वालों और उसका भय मानने वालों को समृद्ध करता है। लेकिन इसराइल के अविश्वास ने इस सब पर रोक लगा दी। उनकी चिल्लाहट के उत्तर में परमेश्वर ने लोगों को पानी दिया था, लेकिन उसने उनके अविश्वास को अपना दंड निर्धारित करने की अनुमति दे दी। फिर से उन्हें मरुस्थल का पारगमन करना था और जल के चमत्कारी सोते से अपनी प्यास बुझानी थी, जिसकी यदि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया होता तो आवश्यकता नहीं पड़ती। तदनुसार इसराइल की सेना दक्षिण की ओर मुड़ गई और अनुपजाऊ बंजर भूमि पर चल पड़ी, जो एदोम की घाटियों और पहाड़ों के हरे भरे स्थानों की झलक के बाद और भी अधिक नीरस प्रतीत हो रही थी। इस अरोचक मरुभूमि की सीमांतर पर्वत श्रृंखला से होर पर्वत उठता है, जिसके शिखर पर हारून की मृत्यु होनी थी और उसे दफनाया जाना था। जब इसराइली इस पर्वत पर पहुंचे, पवित्र आज्ञा मूसा को संबोधित की गई, हारून और उसके पुत्र एलियाजार को होर पहाड़ पर ले चल और हारून के वस्त्र उतारकर उसके पुत्र एलियाजर को पहना, तब हारून वहीं मरकर अपने लोगों में जा मिलेगा।
साथ साथ ये दोनों वृद्ध पुरुष और वह नौजवान पर्वत की ऊंचाई पर चढ़े। मूसा और हारून के केश 60 शीत ऋतुओं की हिम से श्वेत हो चुके थे। उनका लंबा व घटनापूर्ण जीवन महानतम सम्मानों और ऐसी अगाध परीक्षाओं से प्रख्यात था जैसी कभी ही किसी मनुष्य के हिस्से में आई हों। वे अद्भुत स्वाभाविक योग्यता के धनी थे और उनकी प्रत्येक क्षमता सनातन परमेश्वर के साथ संगति के द्वारा विकसित, उन्नत और प्रतिष्ठित हुई थी। उनका जीवन परमेश्वर और उनके सहवासियों की निस्वार्थ सेवा में व्यतीत हुआ था। उनकी मुखाकृतियां महान बुद्धिजीवी क्षमता, उद्देश्य की उत्कृष्टता और दृढ़ता
और घनिष्ठ प्रेम का प्रमाण देती थीं।
कई वर्षों तक मूसा और हारून अपने दायित्व और कर्तव्य में साथ साथ खड़े रहे थे। एक साथ उन्होंने असंख्य खतरों का सामना किया था और परमेश्वर की प्रतीकात्मक आशीषों को एक साथ बांटा था, लेकिन अब उनके अलग होने का समय निकट आ गया था। वे अत्यंत धीमी गति से चल रहे थे क्योंकि संगति का प्रत्येक क्षण अनमोल था। चढ़ाई खड़ी व दुर्गम थी और जब वे प्रायः विश्राम करने के लिए रुकते थे, वे बीते समय और भविष्य के बारे में बातचीत करते थे। उनके सामने जहां तक दृष्टि पहुंचती थी, उनके बीहड़ भ्रमण के दृश्य फैले थे। नीचे मैदान में इसराइलियों की विशाल सेना पड़ाव डाले हुए थी, जिनके लिए इन चुने हुए पुरुषों ने अपने जीवन का उत्तम भाग व्यतीत किया था, जिनके कल्याण के लिए उन्होंने अत्यंत गहरी रुचि की अनुभूति की थी और महान बलिदान दिए थे। एदोम के पर्वतों के पार कहीं वह रास्ता था जो प्रतिज्ञा के देश जाता था, वह देश जिसकी आशीषों का आनंद मूसा और हारून के हिस्से में नहीं था। उनके हृदयों में विद्रोही भावनाओं का कोई स्थान नहीं था, उनके होठों से कुरकुराहट की कोई अभिव्यक्ति नहीं होती थी, लेकिन फिर भी जब उन्हें अपने पितरों की विरासत से वंचित होने का कारण स्मरण होता था तो उनके मुख पर गंभीर उदासी छा जाती थी। इसराइल के लिए हारून का कार्य संपन्न हो चुका था। 40 वर्ष पूर्व जब वो 83 वर्ष का था, परमेश्वर ने उसे मूसा के महान और महत्वपूर्ण कार्य में हाथ बांटने के लिए बुलाया था। उसने मिस्र से इसराइलियों को निकाल लेने में मूसा का सहयोग किया। उसने महान अगवे के हाथों को उठाए रखा जब इब्री सेना अमालेकियों से लड़ रही थी। उसे सिने पर्वत पर चढ़ने की, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की और शाश्वत महिमा के दर्शन करने की अनुमति प्राप्त थी। याजकता का कार्यभार हारून के परिवार को प्रदान किया गया था और उसे महायाजक के पवित्र अभिषेक से परमेश्वर ने सम्मानित किया था। कोरह और उसके दल के विनाश में पवित्र दंडाज्ञा के भयानक प्रदर्शन द्वारा उसने हारून को उसके पवित्र पद पर सुरक्षित रखा। हारून की मध्यस्थता के माध्यम से विपत्ति को स्थगित किया गया। जब उसके दो पुत्रों को परमेश्वर की स्पष्ट आज्ञा की अवमानना के लिए मृत्युदंड दिया गया, उसने ना तो विरोध किया और ना ही वो बड़बड़ाया। फिर भी उसके उत्कृष्ट जीवन का अभिलेख कलंकित हो गया था। हारून ने एक जघन्य अपराध किया जब उसने लोगों की चिल्लाहट के सम्मुख समर्पण कर सिने में सोने का बछड़ा बनाया, और फिर जब वो मूसा के विरुद्ध बड़बड़ाने और ईर्ष्या करने में मरियम के साथ एक हो गया, और कादेश में चट्टान से पानी को प्रवाहित करने के लिए उससे बात करने की आज्ञा का उल्लंघन करके मूसा और हारून ने परमेश्वर को खेदित किया। परमेश्वर चाहता था कि उसके लोगों के ये दो अगुवे मसीह के प्रतिनिधि हों। हारून अपने सीने पर इसराइल के 12 घरानों के नामों को धारण करता था। वो लोगों तक परमेश्वर की इच्छा को पहुंचाता था। पूरे इसराइल के मध्यस्थ के रूप में बिना लहू के नहीं प्रायश्चित के दिन वो सबसे पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। उस कार्य को संपन्न करके वो प्रजा को आशीष देने आगे आता था, जैसे लोगों की ओर से प्रायश्चित के अपने कार्य की समाप्ति पर यीशु भी आगे आकर अपने प्रतीक्षारत लोगों को आशीषित करेगा। हमारे महान महायाजक के प्रतिनिधि के रूप में उस पवित्र पद के उत्कृष्ट स्वभाव ने कादेश में हुए हारून के पाप को इतना गंभीर बना दिया। बड़े दुख के साथ मूसा ने हारून के शरीर पर से उस पवित्र पहनावे को उतारा और उसे एलियाजर पर रखा, और इस रीति से एलियाजर पवित्र नियुक्ति द्वारा हारून का उत्तराधिकारी बना। कादेश में उसके पाप के कारण हारून को कनान में परमेश्वर के महायाजक के तौर पर कार्य करने के विशेषाधिकार से वंचित रखा गया। उस सुखद प्रदेश में प्रथम बलिदान की भेंट चढ़ाकर इसराइल की मीरास को अर्पण करने का विशेषाधिकार। मूसा को कनान की सीमाओं तक लोगों की अगुवाई का दायित्व संभाले रहना था। उसने प्रतिज्ञा के देश के दिखाई देने की सीमा तक आना था, लेकिन कनान में प्रवेश करने की उसे अनुमति नहीं थी। यदि परमेश्वर के इन दासों ने कादेश में चट्टान के सम्मुख खड़े होने के समय उन पर भेजी हुई परीक्षा को बिना कड़कुड़ाए सहन कर लिया होता तो कितना भिन्न होता इनका भविष्य। एक गलत कार्य को अकृत नहीं किया जा सकता। ऐसा भी हो सकता है कि प्रलोभन या विचारहीनता के एक क्षण में जो खो गया हो
उसकी क्षतिपूर्ति जीवन भर का प्रयत्न भी नहीं कर सकेगा।
छावनी से दोनों महान अगुवों की अनुपस्थिति। एलीअजार, जिसके बारे में सबको भली भांति ज्ञात था कि पवित्र पद के लिए वो हारून का उत्तराधिकारी है, उसके उनके साथ जाने के कारण संदेह की भावना ने जन्म लिया और वे उनकी वापसी की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे। जब लोगों ने अपने चारों ओर अपने विशाल समुदाय को देखा तो उन्होंने देखा कि वे सभी प्रौढ़ जिन्होंने मिस्र छोड़ा था बीहड़ में नष्ट हो गए थे। हारून और मूसा को दी गई दंडाज्ञा का स्मरण कर उन्हें अनिष्ट का पूर्वाभास होने लगा। किसी किसी को होर पर्वत के शिखर की रहस्यमयी यात्रा के लक्ष्य के बारे में जानकारी थी और स्वदोषारोपण और कटु स्मृतियों के द्वारा अपने अगुवों के प्रति उनकी चिंता और भी बढ़ गई। आखिरकार मूसा और एलीअजार की आकृतियां पर्वत से धीरे धीरे नीचे आती दिखाई पड़ती, लेकिन हारून उनके साथ नहीं था। एलीअजार ने याजकीय वस्त्र धारण किए हुए थे, जिसका तात्पर्य था कि उसने पवित्र पद पर अपने पिता की जगह प्राप्त की थी। जैसे जैसे लोग भारी मन से अपने अगवे के आसपास एकत्रित हुए, मूसा ने उन्हें बताया कि होर पर्वत पर हारून ने उसकी बाहों में दम तोड़ा और ये कि उन्होंने उसे वहीं दफना दिया था। प्रजा शोक और विलाप में डूब गई, क्योंकि भले ही उन्होंने कई बार उसे दुख पहुंचाया था, लेकिन वे उससे बहुत प्रेम करते थे। तब इज़राइल के सब घरानों के लोग 30 दिन तक रोते रहे।
इज़राइल के महायाजक के दफनाए जाने के संदर्भ में पवित्र शास्त्र केवल एक अभिलेख देता है, वहां हारून मर गया और उसको वहीं मिट्टी दी गई। परमेश्वर के स्पष्ट आदेशानुसार संचालित ये शव संस्कार वर्तमान समय के रीति रिवाजों से कितना भिन्न था। वर्तमान समय में उच्च पद के व्यक्ति का शव संस्कार दिखावटी और अनावश्यक प्रदर्शन का अवसर बना दिया जाता है। हारून की गणना संसार के प्रख्यात लोगों में होती है, लेकिन उसकी मृत्यु के साक्षी और उसे मिट्टी देने वाले केवल उसके 2 घनिष्ठ मित्र थे, और होर पर्वत पर वो एकाकी कब्र हमेशा के लिए इज़राइल से छिप गई। मृतकों पर प्राय किए गए प्रदर्शन और मृत शरीर को मिट्टी को लौटा देने में किए गए अनावश्यक खर्च से परमेश्वर का सम्मान नहीं होता। समस्त प्रजा को हारून के जाने का दुख था, लेकिन मूसा को उसकी कमी की उनसे कहीं ज्यादा अनुभूति हुई। हारून की मृत्यु ने मूसा को यह स्मरण करने को बाध्य कर दिया कि उसका स्वयं का अंत भी निकट था, लेकिन इस पृथ्वी पर उसके रहने का समय भले ही थोड़ा था, उसे अपने हमेशा साथ रहने वाले साथी की बहुत कमी महसूस हुई। हारून ही वो एक था जिसके साथ मूसा ने अपना सुख और दुख, अपनी आशा और भय इतने लंबे समय के लिए बांटे थे। अब मूसा को अपना कार्य अकेले ही संभालना था, लेकिन वो जानता था कि परमेश्वर उसका मित्र था और उस पर वो अधिक निर्भर करता था।
होर पर्वत को छोड़ने के तुरंत बाद इसराइलियों ने एक कनानी राजा अराद के साथ मुठभेड़ में पराजय का सामना किया, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर से आग्रहपूर्वक सहायता मांगी तो उन्हें ईश्वरीय सहायता प्रदान की गई और उसके शत्रुओं को खदेड़ दिया गया। धन्यवादी होने की प्रेरणा देने और लोगों को परमेश्वर पर अपनी निर्भरता का एहसास कराने के बजाय इस विजय ने उन्हें ढींगार और आत्मविश्वासी बना दिया। वे फिर से कड़कड़ाने की आदत में पड़ गए। अब वे असंतुष्ट थे, क्योंकि इज़राइल की सेनाओं को 40 वर्ष पूर्व भेदियों की सूचना पर विद्रोह के पश्चात कनान पर तुरंत चढ़ाई करने की अनुमति नहीं दी गई थी। बीहर में अपने लंबे पड़ाव को अनावश्यक विलंब बताया और ये तर्क रखा कि उन्होंने अपने शत्रुओं पर उतनी ही आसानी से विजय पाली होती जैसे कि अभी प्राप्त की थी। दक्षिण की ओर यात्रा में उनका मार्ग एक छाया या वनस्पति रहित घाटी से होकर निकलता था। रास्ता लंबा और कठिन प्रतीत होता था और वे भूख और थकान से पीड़ित थे। फिर से वे धैर्य और विश्वास की परीक्षा में खरे नहीं उतरे। निरंतर अपने अनुभवों के अंधकारमय पक्ष के बारे में सोचने के कारण उन्होंने स्वयं को परमेश्वर से बहुत दूर कर लिया। वे उस तथ्य को भूल गए कि यदि कादेश में उन्होंने पानी के प्रवाह के रुकने पर बड़बड़ाया नहीं होता तो उन्हें एदोम के चारों ओर घूमकर यात्रा नहीं करनी पड़ती। परमेश्वर के पास उनके लिए बेहतर चीजों का प्रयोजन था। उनके हृदय परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता से पूर्ण होने चाहिए थे,
कि उसने उनके पापों को कम दंडित किया था,
लेकिन इसके बजाय वे स्वयं को संतुष्ट करते रहे कि यदि परमेश्वर और मूसा ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो उन्होंने अब तक प्रतिज्ञा के देश पर अधिकार पा लिया होता। स्वयं पर संकट लाकर, अपने जीवन को परमेश्वर की योजना से अधिक कठिन बनाकर, उन्होंने अपने दुर्भाग्य का आरोप परमेश्वर पर लगा दिया। इस प्रकार अपने प्रति उसके व्यवहार के संबंध में कटु विचार संजोते रहे और अंततः वे प्रत्येक चीज से असंतुष्ट हो गए, मिस्र स्वतंत्रता से और उस देश से असंतुष्ट हो गए, मिस्र स्वतंत्रता से और उस देश से जहां परमेश्वर उन्हें लेकर जा रहा था अधिक वांछनीय और उज्ज्वल दिख रहा था।
असंतोष की भावना में लिप्त होने से इजरायली अपनी आशीषों में भी त्रुटियां निकालने पर उतारू हो गए। वे परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध बातें करने लगे। तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहां ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। मूसा ने निष्ठापूर्वक लोगों के सम्मुख उनके महापाप को रखा। केवल परमेश्वर के सामर्थ्य ने उन्हें उस बड़े और भयानक बीहड़ में भी सुरक्षित रखा, जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू और सूखा था, और जहां जल न था। व्यवस्था विवरण 8:45। उनकी यात्रा के प्रत्येक दिन उन्हें ईश्वरीय कृपा के चमत्कार द्वारा जीवित रखा गया। परमेश्वर के मार्गदर्शन में पूरे रास्ते उन्हें जल मिलता रहा था, जिससे प्यासे तृप्त होते थे। भूख को शांत करने के लिए स्वर्ग से रोटी मिलती थी। रात को अग्नि के स्तंभ द्वारा और दिन को छाया देने वाले बादल के नीचे सुख और शांति मिलती थी। जब वे पथरीली ऊंचाइयों पर चढ़ते या बीहड़ के ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर पंक्तिबद्ध होकर चलते थे, स्वर्गदूत उनकी सेवा टहल करते थे। इतनी कठिनाइयां झेलने के बावजूद भी उनके सारे जत्थों में एक भी दुर्बल व्यक्ति नहीं था। लंबी यात्रा में ना तो उनके पैरों में सूजन आई और ना ही उनके कपड़े पुराने हुए थे। परमेश्वर ने उनके सम्मुख जंगल और मरुस्थल के हिंसक पशुओं और विषैले रेंगने वाले जानवरों को वशीभूत कर दिया था। यदि उसके प्रेम के इन सब प्रतीकों के बाद भी लोग शिकायतें करते रहते, तो यहोवा अपनी सुरक्षा से उन्हें तब तक वंचित रखता जब तक वे उसकी करुणामय देखभाल का मान नहीं रखते और दीनता और प्रायश्चित में उसके पास लौटकर नहीं आते। ईश्वरीय सामर्थ्य की सुरक्षा में वे उन असंख्य खतरों को नहीं जान पाए जिनसे वे हमेशा घिरे हुए रहते थे। अपने अविश्वास और कृतज्ञहीनता में वे मृत्यु की आशा कर रहे थे, और अब यहोवा ने उन पर मृत्यु को आने की अनुमति दे दी। बीहर में बहुतायत से विषैले सर्प थे, जिन्हें अग्निमय सर्प कहा जाता था, क्योंकि इनके डंक का प्रभाव अत्यंत भयानक था, जिससे सूजन और जलन हो जाती थी और डंक मारे व्यक्ति की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती थी। इसराइलियों पर से परमेश्वर की सुरक्षा का हाथ हटते ही बड़ी संख्या में लोगों पर इन विषैले सर्पों ने आक्रमण किया। पूरी छावनी में भय और गड़बड़ी फैल गई। लगभग प्रत्येक तंबू में कोई न कोई मर रहा था या मर चुका था। कोई भी सुरक्षित नहीं था। प्रायः कर्णभेदी चीखें रात के सन्नाटे को तोड़ देती और नए पीड़ितों की सूचना देती। सभी लोग पीड़ितों की सेवा में या सर्प से बचे हुए लोगों की अत्यधिक रखवाली के प्रयत्न में व्यस्त थे। उनकी इस समय की पीड़ा की तुलना में उनकी बीती कठिनाइयों और परीक्षाओं के बारे में विचार करना व्यर्थ था। अब लोगों ने स्वयं को परमेश्वर के सम्मुख दीन किया। वे अपने पापों का अंगीकार कर और निवेदन लेकर मूसा के पास आए। हमने पाप किया है, वे बोले, क्योंकि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। कुछ ही समय पहले उन्होंने मूसा को उनका सबसे बड़ा शत्रु होने का दोषी और उनके सभी कष्टों और कठिनाइयों का कारण ठहराया था। लेकिन जब शब्द उनके होठों पर ही थे, वे जानते थे कि आरोप झूठा है, और जैसे ही वास्तव में विपत्ति आई तो वे उसके पास दौड़े चले आए, क्योंकि वे जानते थे केवल वही परमेश्वर के साथ उनके लिए मध्यस्थता कर सकता था। उन्होंने विनती की, यहोवा से विनती कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे।
मूसा को पवित्र आदेश दिया गया
कि वो जीवित सर्पों से मिलता जुलता एक पीतल का सांप बनाए और उसे लोगों के सम्मुख उठाए। सांप द्वारा सभी काटे हुओं को इस पीतल के सर्प को देखना था और ऐसा करने से उन्हें आराम मिलना था। मूसा ने ऐसा ही किया और संपूर्ण छावनी में ये शुभ समाचार पहुंचाया गया कि जिन्हें भी सांप ने काटा था वे पीतल के सांप को देखकर जीवित रह सकते थे। कई मर चुके थे और जब मूसा ने सांप की प्रतिमा को खंभे पर लटकाया, कुछ लोगों को विश्वास नहीं था कि केवल धातु की प्रतिमा को देख लेने से वे चंगे हो जाएंगे। ये लोग अपने अविश्वास के कारण मारे गए। लेकिन बहुत से लोग थे जिन्हें परमेश्वर द्वारा किए गए प्रयोजन में विश्वास था। पिता, भाई, माएं और बहनें पीड़ितों और मरते हुए मित्रों की निस्तेज आंखों को सांप की प्रतिमा पर केंद्रित करने में चिंतावश व्यस्त थे। यदि ये, हालांकि निर्बल और मरने वाले थे, केवल एक बार उसे देख पाते तो वे पूर्णतया पूर्वावस्था में आ जाते। लोग भली भांति जानते थे कि पीतल के सांप में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो उस पर दृष्टि डालने वाले में ऐसा परिवर्तन ला सके। आरोग्यकर गुण केवल परमेश्वर की ओर से था। इस साधारण उपाय से लोगों को ये आभास कराया गया कि ये कष्ट उन पर उनके पापों द्वारा लाया गया। उन्हें ये भी आश्वासन दिया गया कि यदि वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहें तो डरने का कोई कारण नहीं, क्योंकि वो उन्हें सुरक्षित रखेगा। पीतल के सांप को ऊंचा उठाकर इज़राइल को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाना था। वे अपने घावों के विष के प्राणघातक प्रभाव से स्वयं को बचाने में असमर्थ थे। केवल परमेश्वर ही उन्हें आरोग्य करने में सक्षम था। फिर भी उन्हें परमेश्वर द्वारा दिए गए प्रावधान में अपना विश्वास प्रकट करना था। जीवित रहने के लिए उन्हें दृष्टि डालनी थी। वह उनका विश्वास था जो परमेश्वर को स्वीकार्य था, और सांप पर दृष्टि करने से उनका विश्वास प्रकट होता था। उन्हें ज्ञात था कि सांप में स्वयं कोई विशेष गुण नहीं था, लेकिन वह मसीह का प्रतीक था और उसके सद्गुणों में विश्वास की आवश्यकता को उनके मनों में प्रस्तुत किया गया। इससे पहले बहुत से लोग परमेश्वर के लिए भेंट लेकर आए थे और उन्हें लगता था कि ऐसा करने से उन्होंने अपने पापों के लिए पर्याप्त प्रायश्चित कर लिया था। वे आने वाले उद्धारकर्ता पर निर्भर नहीं करते थे, जिसकी ये भेंटें केवल रूप प्ररूप थीं। परमेश्वर अब उन्हें ये सिखाना चाहता था कि जैसे पीतल के सांप में कोई गुण या शक्ति नहीं थी, वैसे ही उनके बलिदानों में स्वयं की कोई गुणवत्ता नहीं थी, और इस प्रकार वह उनका ध्यान उस महान पाप बलि मसीह की ओर आकर्षित करना चाहता था। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, इस रीति से मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:14-15। जितने भी लोग इस पृथ्वी पर रहे हैं, उन्होंने उस पुराने सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है, प्रकाशित वाक्य 12:9 के विषैले डंक को महसूस किया है। पाप के प्राणघातक प्रभाव केवल परमेश्वर द्वारा रखे गए प्रावधान के द्वारा ही मिटाया जा सकता है। इसराइलियों ने उठाए हुए सांप पर दृष्टि डालकर स्वयं को बचा लिया। उस दृष्टि का तात्पर्य विश्वास था। वे जीवित रहे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन में विश्वास रखा और उनके पूर्वावस्था में आने के लिए दिए गए साधन में विश्वास किया। इसी प्रकार पापी मसीह को देखकर जीवित रह सकता है। प्रायश्चित के बलिदान में विश्वास द्वारा उसे क्षमा प्राप्त होती है। निर्जीव और निष्क्रिय प्रतीक के विपरीत मसीह के पास पश्चातापी पापी को चंगा करने के लिए स्वयं की शक्ति और विशेषता होती है। पापी स्वयं को नहीं बचा सकता, लेकिन उद्धार पाने के लिए वो कुछ कर सकता है। यूहन्ना 6:37 में लिखा है, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा, लेकिन हमें उसके पास अवश्य आना है। और जब हम अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, हमें विश्वास करना चाहिए कि वो हमें स्वीकार करता है और हमें क्षमा करता है। विश्वास परमेश्वर का वरदान है, लेकिन उसका अभ्यास करने की शक्ति हमारी है। विश्वास वो हाथ है जिससे मनुष्य अनुग्रह और कृपा के पवित्र प्रस्ताव को ग्रहण करता है।
केवल मसीह की धार्मिकता हमें अनुग्रह की वाचा की आशीष का पात्र बना सकती है। कई लोगों ने लंबे समय से इन आशीषों की अभिलाषा की है और इन्हें प्राप्त करने की चेष्टा की है, लेकिन उन्हें ये आशीष प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने इस विचार को संजोए रखा कि वे स्वयं को इनके योग्य बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं। वे अपने अहम से हटकर नहीं देख पाए हैं इस विश्वास के साथ भी कि यीशु एक अपने आप में सर्वपर्याप्त उद्धारकर्ता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे स्वयं की गुणवत्ता हमें बचा लेगी, केवल मसीह की हमारे उद्धार की आशा है। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रेरितों 4:12। जब हम परमेश्वर में पूर्णतया विश्वास रखते हैं, जब हम पाप क्षमा करने वाले उद्धारकर्ता के रूप में यीशु की योग्यता पर निर्भर करते हैं, तो हमें वह सहायता प्रदान की जाती है जिसकी हमें अभिलाषा होती है। किसी को भी स्वयं के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए मानो उनमें स्वयं को बचाने की योग्यता है। यीशु ने हमारे लिए इसलिए प्राण दिया क्योंकि हम स्वयं को बचाने में असहाय थे। उसी में है हमारी आशा, हमारी दोषमुक्ति, हमारी धार्मिकता। अपनी पापमयता को देखकर हमें यह निराशा या भय नहीं होना चाहिए कि हमारे पास उद्धारकर्ता नहीं, या यह कि उसका हमारे प्रति दया का कोई विचार नहीं। इसी समय वह हमें हमारी विवशता में उसके पास आने का निमंत्रण देता है ताकि वह हमें बचा सकें। बहुत से इसराइलियों ने स्वर्ग द्वारा निर्धारित उपाय में कोई सहायता नहीं देखी। उनके चारों तरफ मृतक और मरने वाले थे और उन्हें ज्ञात था कि बिना ईश्वरीय सहायता के उनका अपना अंत भी निश्चित था, लेकिन वे अपने घावों, अपनी पीड़ाओं, उनकी निश्चित मृत्यु का विलाप करते रहे जब तक कि उनकी शक्ति जाती न रही और उनकी आंखें पथरा न गई, जबकि उन्हें तत्काल चंगाई मिल सकती थी। यदि हम अपनी आवश्यकताओं के प्रति सजग होते हैं तो हम हमारी सारी शक्ति उन पर शोक मनाने के लिए समर्पित नहीं कर देनी चाहिए। मसीह के अभाव में हमारी असहाय अवस्था को जानकर हमें निराशा के आगे समर्पण करने के बजाय उस उद्धारकर्ता पर निर्भर करना चाहिए जो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया और जो जी उठा। देखो और जीवित रहो, यीशु ने प्रतिज्ञा की थी, वो उन सब को बचाएगा जो उसके पास आएंगे। लाखों लोग जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है उसकी प्रस्तावित करुणा का तिरस्कार करेंगे, लेकिन उसकी सामर्थ्य में विश्वास रखने वाला एक भी मनुष्य नष्ट नहीं होगा। कई लोग मसीह को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं जब तक उद्धार की योजना का संपूर्ण रहस्य उनके लिए स्पष्ट न किया जाए। विश्वास की दृष्टि को वे अस्वीकार कर देते हैं, जबकि वे साक्षी हैं इस तथ्य के कि हजारों लोगों ने मसीह के क्रूस को देखा और उसे देखने की गुणवत्ता को महसूस किया। कई लोग कभी न मिलने वाले प्रमाणों और तर्कों की खोज में तर्कशास्त्र की भूल भुलैया में घूमते रहते हैं और वे उस प्रमाण को अस्वीकार कर देते हैं जो परमेश्वर ने प्रसन्न होकर दिया है। वे धार्मिकता के सूरज के प्रकाश में चलना स्वीकार नहीं करते जब तक उन्हें उसके चमकने का कारण न समझाया जाए। जो भी इस रास्ते पर चलने पर अड़े रहेंगे वे सत्य के ज्ञान को प्राप्त करने में असमर्थ होंगे। परमेश्वर कभी भी संदेह का प्रत्येक अवसर नहीं हटाएगा, वो विश्वास के आधार के लिए पर्याप्त प्रमाण देता है, और यदि इसे स्वीकार नहीं किया जाता तो विवेक अंधकार में रह जाता है। यदि जिन्हें सांप ने काटा था पीतल के सांप को देखने की स्वीकृति देने से पूर्व प्रश्न या संदेह करने के लिए रुके होते तो वे नष्ट हो जाते। हमारा कर्तव्य है कि सबसे पहले हम दृष्टि डालें और वो विश्वास की दृष्टि हमें जीवन देगी।